संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 13 मई 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। यूक्रेन में युद्ध में आम लोगों के विरुद्ध अत्याचारों की खबरें, मदद के प्रयास जारी, सुरक्षित निकासी से बंधी कुछ उम्मीद भी। श्रीलंका में महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रदर्शनों का दायरा हुआ व्यापक और हिंसक भी, सुनिएगा एक इंटरव्यू। तापमान वृद्धि पर आगाह करने वाली WMO की एक ताज़ा रिपोर्ट, एक प्रख्यात फिलिस्तीनी पत्रकार की हत्या की जांच कराए जाने की मांग और शराब बिक्री के लिए आक्रामक मार्केटिंग में बढ़ोतरी, सख्त नियमों की पुकार। हम आपको याद दिलाते चलें कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हर दिन समाचार आपको खुद ब खुद मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद HRC की गुरुवार को एक विशेष सत्र में बैठक हुई है, जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से आम लोगों के विरुद्ध कथित रूप से किए गए अत्याचारों से उपजी चिंता को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई। इस बीच मानवीय राहत के लिए UN कार्यालय ने कहा है कि मारियूपोल से लोगों को सुरक्षित निकाले जाने से कुछ उम्मीद जागी है, मगर बड़े पैमाने पर विस्थापन की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण हैं। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
यूक्रेन के उन इलाकों में युद्ध अपराधों को अंजाम दिए जाने की आशंका जताई गई है जो कुछ समय पहले तक रूसी सैन्य बलों के नियंत्रण में थे। मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में हताहतों के लिए रूसी सैन्य बल के जिम्मेदार होने की संभावना है, मगर कुछ हद तक यूक्रेनी सैन्य बल भी इसके घेरे में हैं।
The vast majority continue to be caused by the use of explosive weapons with wide area effects in populated areas such as shelling from heavy artillery, including multiple launch rocket systems and missile and airstrikes.
UN मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाशलेट कह रही थी कि अधिकांश आम जन अब भी घनी आबादी वाले इलाकों में व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विस्फोटक हथियारों जैसे कि भीषण गोलाबारी, मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणालियों, मिसाइल और हवाई हमलों का इस्तेमाल किए जाने से हताहत हो रहे हैं। मानवाधिकार प्रमुख ने कीव और चेर्निहिव में UN जांचकर्ताओं की पड़ताल का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल कीव क्षेत्र में 1000 से अधिक आम लोगों के शव मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र में मानवीय राहत मामलों की उप प्रमुख जॉयस मिस्यूआ ने गुरुवार को सुरक्षा परिषद को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि मारियूपोल और आसपास के इलाकों से 600 से अधिक आम लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता मिली है, जिससे उम्मीद जगी है। इसके बावजूद यूक्रेन के अन्य इलाकों में जारी भीषण लड़ाई से पीड़ा बरकरार है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने श्रीलंका में गंभीर हालात की पृष्ठभूमि में हिंसा की रोकथाम करने, स्थानीय आबादी की पीड़ाओं पर मरहम लगाने और आर्थिक चुनौतियों का समाधान तलाश करने के लिए अर्थपूर्ण संवाद का आग्रह किया है। उन्होंने मंगलवार को जारी अपने एक वक्तव्य में श्रीलंका में हिंसा में आई तेजी पर गहरी चिंता जताई। बताया गया है कि आर्थिक संकट के कारण खाद्य वस्तुओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता पर गंभीर असर हुआ है, जिससे निर्धनता में जीवन गुजार रहे और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विदेशी कर्ज, भ्रष्टाचार और कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति में उछाल आया है, ईंधन और अति आवश्यक सामान की किल्लत है और लंबे अंतराल के लिए बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हुए देश में राजनीतिक व आर्थिक सुधारों की मांग की है। श्रीलंका में मौजूदा हालात पर ताज़ा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने देश में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर यानी RCO हना सिंगर हमदी के साथ खास बातचीत की। उसी पर आधारित ये रिपोर्ट।
श्रीलंका में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 9 मई को राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण परेशान प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच हिंसा भड़कने से 8 लोग मारे गए और 250 घायल हो गए। श्रीलंका में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हना सिंगर हमदी ने UN न्यूज को एक खास बातचीत में बताया।
The severe economic crisis has made daily life in Sri Lanka a struggle.
गंभीर आर्थिक संकट ने श्रीलंका में रोजमर्रा के जीवन को संघर्षपूर्ण बना दिया है। संकट की शुरुआत से संयुक्त राष्ट्र की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली द्वारा 1000 से अधिक विरोध प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। शुरू में ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण थे और आम नागरिक इसका हिस्सा थे जो सरकार बदलने का आह्वान कर रहे थे। बाद में इनमें राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, छात्र संघ, पादरीगण व अन्य हितधारक समूह जुड़ गए। फिर जैसे जैसे गैस और ईंधन की कमी बढ़ती गई, वितरण स्थानों के आसपास विरोध और संघर्ष का एक नया रूप दिखाई देना शुरू हो गया और फिर विरोध को दबाने की कोशिशों और एक हिंसक प्रदर्शन के प्रयासों ने उस हिंसा को जन्म दिया जो आपने मीडिया में देखी है और जिस कारण आपातकाल की घोषणा की गई
एंड ऑफ कोर्स टू द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी।
श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हना सिंगर हमदी के शब्द। उन्होंने बताया कि श्रीलंका में मौजूद संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि इससे किसी भी तरह का मानवीय संकट न उत्पन्न हो।
We are working very closely with the international financing.
हम विश्व बैंक, IMF, AGB जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण को समन्वित करके उनका समर्थन सुनिश्चित किया जा सके। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम स्थिति को मानवीय संकट में परिवर्तित होने से रोकें, इसलिए हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। ये एक मध्यम आय वाला देश है और हमें इसके संस्थानों को मानवीय संकट में जाने से बचाना होगा। श्रीलंका में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर हना सिंगर हमदी के शब्द। उन्होंने उम्मीद जताई कि हालात जल्दी बेहतर होंगे और राजनीतिक संकट के हल के साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और एक बार फिर वहां तैनात संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां देश को टिकाऊ पुनर्बहाली की राह पर अग्रसर कर सकेंगी।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में औसत वैश्विक तापमान के पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच जाने की संभावना लगभग 50% तक पहुंच गई है और ये आशंका समय के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अपडेट में आशंका व्यक्त की गई है कि 2022 से 2026 के दौरान कम से कम कोई एक वर्ष अब तक का सर्वाधिक गर्म साल होने का रिकॉर्ड बना सकता है। ऐसा होने की 93% संभावना है। अभी तक सबसे गर्म साल होने का रिकॉर्ड 2016 के पास है। 2022 से 2026 की अवधि के लिए 5 सालों का औसत तापमान उससे पिछले 5 सालों की तुलना में अधिक रहने की संभावना भी 93% है। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए प्रयासों का आह्वान किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में अल जजीरा की प्रख्यात पत्रकार शिरीन अबू अकलेह की हत्या के हालात की जांच कराए जाने की मांग की है। 51 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अकलेह पश्चिमी तट के जेनिन कस्बे में इसराइली सेना के एक अभियान की रिपोर्टिंग कर रही थीं जब उन्हें जानलेवा गोली लगी और उनकी मौत हो गई। यूनेस्को की अध्यक्ष ऑड्री अजूले ने पत्रकार शिरीन की हत्या की निंदा करने वाला एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि शिरीन अबू अकलेह को इस सच्चाई के बावजूद गोली मारी गई जबकि वो एक ऐसी जैकेट पहने हुए थीं जिस पर प्रेस लिखा हुआ था। किसी संघर्ष वाले क्षेत्र में स्पष्ट रूप से चिन्हित प्रेस कामगार की हत्या किया जाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक नई रिपोर्ट के अनुसार शराब पीने को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का इस्तेमाल बढ़ रहा है जिसमें ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों और युवाओं पर विशेष रूप से लक्षित विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि बहुत से देशों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल की परवाह किए बिना अल्कोहल की मार्केटिंग के लिए डिजिटल माध्यमों का भी सहारा लिया जाता है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडिनोम गेब्रियसिस ने कहा है कि शराब युवा लोगों, उनके परिवारों और समाजों से उनका जीवन व संभावना छीन लेती है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।